आप सुन रहे हैं सुनो किताब।
हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अनु और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। ये क्लास 10th के साइंस का 12th चैप्टर है और आज की क्लास को शुरू करने से पहले हम रिवाइज कर लेंगे कि इस चैप्टर के अंदर हमने लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़ लिया है। लास्ट क्लास में हम लोग बेसिकली पढ़ रहे थे कि रेजिस्टेंस जो होता है वो किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। मैंने आप लोगों को बताया था कि रेजिस्टेंस को अगर आप वेरिएशन देना चाहते हैं, रेजिस्टेंस को अगर आप बदलना चाहते हैं, तो उसके लिए आप सर्किट में करंट या वोल्टेज में वेरिएशन ला करके आप रेजिस्टेंस में वेरिएशन नहीं ला सकते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस जो होता है वो किसी डिवाइस का मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पर फिक्स कर दिया जाता है। उसके बाद उसे आप बदल तभी सकते हैं अगर आप उसे रीमैन्युफैक्चर करें। तो यहाँ पर अगर आप लोगों को रेजिस्टेंस में वेरिएशन लाना है तो आप ओम्स लॉ से ना समझें कि रेजिस्टेंस में बदलाव लाने के लिए अगर आप वोल्टेज या करंट में वेरिएशन लाएं तो आप रेजिस्टेंस में वेरिएशन ला सकते हैं। तो किसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस का रेजिस्टेंस जो है, अगर आप उसको वेरिएशन देना चाहते हैं तो आपको पता है V is equal to IR होता है। इसमें R है तो V और I पे R डिपेंड करता होगा, आपको ऐसा लग सकता है, लेकिन ऐसा आप प्रैक्टिकली नहीं देखते हैं, ऐसा होता नहीं, क्योंकि आप वैसे भी ओम्स लॉ में क्या देखते हैं, आप ओम्स लॉ की स्टेटमेंट पढ़े तो ओम्स लॉ की स्टेटमेंट कहती है अगर टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहे तो करंट और जो पोटेंशियल डिफरेंस है इन दोनों का वेरिएशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और वी बाय आई जो है वो एक कांस्टेंट के बराबर होता है, रेजिस्टेंस जो है वो एक कांस्टेंट होता है। तो रेजिस्टेंस में आप वेरिएशन नहीं ला सकते हैं। रेजिस्टेंस में अगर आपको वेरिएशन लाना है तो आपको दो काम आप कर सकते हैं, या तो आप रीमैन्युफैक्चर करें या आप टेम्परेचर में वेरिएशन लाएं। तो रेजिस्टेंस में थोड़ा बहुत वेरिएशन टेम्परेचर में वेरिएशन से भी आता है, लेकिन जो नॉर्मल क्वांटिटीज हैं जिनके ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है वो है लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड मटेरियल ऑफ द वायर। जिस वायर से रेजिस्टेंस को बनाया गया है तो उस वायर की लेंथ पर, उस वायर की क्रॉस सेक्शनल एरिया पर और उसकी मटेरियल पर डिपेंड करता है रेजिस्टेंस जो है वो उसी पर डिपेंड करता है। तो हम लोगों ने एक्टिविटी 12.3 की थी, इसमें हमने देखा था कि निक्रोम वायर की लेंथ डबल करने पर रेजिस्टेंस डबल हो गया तो करंट हाफ हो गया, अगर आपने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डबल किया तो रेजिस्टेंस हाफ हो गया, रेजिस्टेंस हाफ हो गया तो करंट डबल हो गया, और अगर आप देखें कि मटेरियल अलग अलग आप यूज करते हैं तो उससे भी रेजिस्टेंस में वेरिएशन आ जाता है, और उसमें भी लेंथ पर जो डिपेंडेंस होता है रेजिस्टेंस का वो डायरेक्ट होता है, एरिया पर इन्वर्स होता है, और साथ में जब हम लोग एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लगाते हैं तो वो मटेरियल ऑफ दी वायर का काम भी करता है। तो फाइनली हम लोग को जो फॉर्मूला मिलता है वो मिलता है R इज इक्वल टू रो एल बाय ए। रो जो है वो मटेरियल ऑफ दी वायर के बारे में बता रहा है। रो को हम रेजिस्टिविटी कहते हैं, इसका SI यूनिट होता है ओम मीटर। तो रेजिस्टिविटी जो है ये बेसिकली मटेरियल ऑफ दी वायर पर डिपेंड करती है इसकी वैल्यू, और ये फॉर्मूला इम्पॉर्टेंट है R इज इक्वल टू रो एल बाय ए। इसके ऊपर आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे। फिर हमने देखा था कि अलॉयज जो होते हैं इनकी रेजिस्टिविटी का किस तरीके का ऑर्डर होता है, 10^-8 टू 10^-6 का ऑर्डर होता है मेटल और अलॉयज के रेजिस्टिविटी का। तो इस तरीके से हमने बात की थी। सिमिलरली हमने बात की थी कि जो इंसुलेटर्स होते हैं रबर या फिर ग्लास या फिर प्लास्टिक, इनकी जो रेजिस्टिविटी होती है उसकी वैल्यू बहुत ही हाई होती है, 10^12 से 10^17 ओम मीटर के रेंज की होती है, और रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों ही टेम्परेचर के साथ वेरिएशन शो करते हैं। और इनमें से भी सबसे अच्छा अगर कोई मटेरियल माने जो टेम्परेचर के साथ कम वेरिएशन शो करता है वो कौन होता है, वो होता है अलॉयज। इसीलिए अलॉयज को हम यूज करते हैं एज टोस्टर्स या फिर आयरन। तो जो हमारे अलॉयज होते हैं, एक तो इनकी जो रेजिस्टिविटी है ये हाई है एज कम्पेयर टू एनी मेटल, तो मेटल से अलॉयज की रेजिस्टिविटी हायर होती है। इसकी वजह से क्या होता है कि डिवाइस जल्दी गर्म हो जाता है। तो ऐसे डिवाइसेस जिसमें हम सामान को गर्म ही करना चाहते हैं, जैसे टोस्टर्स में हम ब्रेड को गर्म करना चाहते हैं, आयरन जो है उससे हम कपड़ों को गर्म करना चाहते हैं, तो ऐसे डिवाइसेस जो हैं जिसमें आसानी से डिवाइस गर्म हो जाए, तो इन डिवाइसेस की वायर को बनाने के लिए हम अलॉयज का यूज करते हैं ताकि वो जल्दी गर्म हो जाए और जल्दी से हम अपना काम कर सके। लेकिन खास बात अलॉयज की ये होती है कि इतनी जल्दी गर्म होने के बावजूद भी ये बर्न नहीं होते, तो इनका टेम्परेचर कोएफिशिएंट ज़्यादा होता है तो इसलिए ये जल्दी बर्न नहीं होते। तो ये दो फायदा होने की वजह से, एक तो ये बर्न नहीं होते हाई टेम्परेचर होने के बावजूद भी, और दूसरा इनकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है, इसी वजह से हम इनको
यूज करते हैं एज टोस्टर्स एंड आयरन।
बल्ब की फिलामेंट में हम टंगस्टन को यूज करते हैं, कॉपर वायर और एल्युमिनियम वायर का हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल लाइंस बनाने के लिए, वायर्स बनाने के लिए, ट्रांसमिशन लाइंस बनाने के लिए। तो इस तरीके से हम लोगों ने लास्ट क्लास में बात कर ली थी, फिर हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए थे जो कि पेज नंबर 208 पर हैं। ये क्वेश्चंस डिस्कस करने के बाद मैंने आपको एक क्वेश्चन होमवर्क दिया था जो कि पेज नंबर 209 पर है, एग्जांपल 12.6। तो अगर आपसे ये हो गया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हुआ है तो हम इसे डिस्कस कर लेते हैं तो आपको यहाँ पर अभी समझ आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर बोला है एग्जाम्पल 12.6 में कि अ वायर ऑफ गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ एल एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए हैज रेजिस्टेंस 4 ओम। What would be the resistance of another wire of the same material having length L by 2 and area of cross section 2A? तो सिंपल है, आप लोगों को बेसिकली फॉर्मूला ही यूज करना है। और यहाँ पर आपसे पूछ क्या रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं कि एक रेजिस्टेंस आपके पास है जिसकी वैल्यू है 4 ओम और इस रेजिस्टेंस की लेंथ जो है जिस वायर से ये बना है रेजिस्टेंस, तो इसकी लेंथ जो है वो है L, स्मॉल L, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है कैपिटल A। अगर आपने एक और रेजिस्टेंस बनाना है जिसकी आप लेंथ जो है वो L by 2 रखेंगे और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो 2A रखेंगे, लेकिन मटेरियल आप सेम रखेंगे, पहले वाले रेजिस्टेंस के जैसे ही मटेरियल रखेंगे, तो इस बार नया रेजिस्टेंस क्या मिलेगा आपको? तो आपको जब क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है पेपर के ऊपर, तो आप उसको सिस्टमेटिकली सॉल्व करेंगे। आप सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे R इज इक्वल टू रो L by A। फर्स्ट सिचुएशन में R की वैल्यू आपको दी है 4 ओम, लेंथ दिया है स्मॉल l, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया है कैपिटल A। तो आप लिखेंगे 4 इज इक्वल टू स्मॉल l रो स्मॉल l बाय A। रो जो है वो हम मान के चल रहे हैं कि मटेरियल जो है वो है वायर का, और रो जो है उसका आपको वैल्यू सेम रहेगा। दो सिचुएशंस दी हैं, पहले सिचुएशन में लेंथ l है वायर का, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैपिटल A है। तो इस सिचुएशन में मटेरियल ऑफ द वायर का मान लीजिए वैल्यू रेजिस्टिविटी जो है उसको आप रो से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब सेकेंड सिचुएशन, फिर से आप लिखेंगे, इस बार आप लिखेंगे R2 इज इक्वल टू L डैश रो L डैश अपॉन A डैश। पहला वाला तो आप लिखेंगे 4 इज इक्वल टू रो स्मॉल L बाय कैपिटल A। अब दूसरा आपको लिखना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको लिखना है R2 इज इक्वल टू रो L डैश लिखो चाहे L2 लिखो, स्मॉल ऐसे लिख दो, R2 कैपिटल R2 इज इक्वल टू रो स्मॉल L2 अपॉन A2 कैपिटल A2, इस तरीके से लिख दो। और यहाँ पर रो आपको पहले वाले सिचुएशन में और दूसरे वाले सिचुएशन में दोनों में सेम रखना है। R2 में जो रो है वो सेम है क्योंकि मटेरियल आपने क्या लिया, मटेरियल आपने सेम लिया, इसलिए आप लोगों को ध्यान रखना है कि आपको क्या चीजें सेम करनी है। अगर आप रो सेम रखेंगे, रेजिस्टिविटी सेम रखेंगे, तो उसका क्या मीनिंग निकलता है, उसका मीनिंग निकलता है कि आपने मटेरियल सेम लिया है, वायर जो आप बना रहे हैं, जो आपने 4 ओम का रेजिस्टेंस बनाया उसका वायर का मटेरियल और जो आप दूसरा वायर बनाने जा रहे हैं दोनों का मटेरियल सेम है। यही आपको यहाँ पर बोला भी गया है कि मटेरियल आपने सेम लिया हुआ है, तो इसलिए आप रो को सेम रखेंगे, बाकी एल की जगह स्मॉल एल टू लिख देंगे, ए की जगह कैपिटल ए टू लिख देंगे। अब आर टू जो है आपका, उसमें आपने क्या लिखा, आर टू इज इक्वल टू रो स्मॉल एल टू अपॉन कैपिटल ए टू। अब एल टू की जगह और ए टू की जगह वैल्यूज पुट करेंगे जो आप लोगों को यहाँ पर गिवन है, तो ये वैल्यूज आप पुट करेंगे, तो आप कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे आर टू इज इक्वल टू रो स्मॉल एल बाय टू अपॉन टू ए। फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा आर टू इज इक्वल टू रो एल स्मॉल एल अपॉन फोर कैपिटल ए। अब इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो आप लिखोगे R2 is equal to 1 by 4, इसको अलग करा, into rho L by A। rho L by A की वैल्यू आपको पता है 4, 4 ओम, तो आपका क्या R2 का वैल्यू आ गया, आपका R2 का वैल्यू आ गया R2 is equal to 1 upon 4 rho L by A। rho L by A की जगह लिख दिया 4 ओम, 4 से 4 कैंसिल हो गया, फिर 1 ओम की वैल्यू आपको R2 में मिल गई, तो R2 is equal to 1 ओम। इससे आपको ये भी पता चलता है कि अगर आप किसी वायर का मटेरियल सेम रखें, उसका लेंथ जो है वो आधा कर दें, क्रॉस सेक्शनल एरिया डबल कर दें, तो उसका रेजिस्टेंस जो है वो 1/4 हो जाता है। तो इस तरीके से आपको इस टाइप के क्वेश्चंस करने होते हैं जिसमें आप लोगों को नई सिचुएशन दी गई होती है, एक पहली सिचुएशन दी गई होती है और एक दूसरी सिचुएशन दी गई होती है, और आपको कंपैरिजन करना होता है पहले सिचुएशन में और दूसरी सिचुएशन में, तो उसको आप लोग इस तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद हमको क्या करना था, यहाँ पर पेज नंबर 209 पर जो ये 5 क्वेश्चंस हैं इनको भी डिस्कस करना था। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड।
एक कंडक्टर के जो रेजिस्टेंस है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ ऑफ द वायर पे डिपेंड करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर पे डिपेंड करता है, और उसकी मटेरियल जो वायर जो है वो किस मटेरियल की बनी है, इन इस फैक्टर पे भी ये डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। तो हम कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ द वायर, द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर एंड द मटेरियल ऑफ द वायर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, विल करंट फ्लो मोर इजीली थ्रू अ थिक वायर और अ थिन वायर ऑफ द सेम मटेरियल व्हेन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स, व्हाई। इसमें पूछा कि आप पतली तार में करंट इजीली फ्लो करेगा कि मोटी तार में करंट इजीली फ्लो करेगा अगर आप किसी सेम सोर्स से तार को लगा रहे हैं, और क्यों। ये भी पूछा है कि क्यों, आपने जो आंसर दिया है उसके पीछे रीजन क्या है। तो देखो हमारे पास फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू रो एल बाय ए। यहाँ पर अगर हम चाहते हैं कि तो रेजिस्टेंस को कम करने के लिए आपको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो बढ़ाना होगा, यानी कि आपको मोटी वायर लेनी होगी तब रेजिस्टेंस कम होगा, और अगर रेजिस्टेंस कम हो जाएगा किसी वायर के अंदर तो उसकी करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो आपको मोटी वायर लेनी होगी। तो इस तरीके से आपको सोचना है, सबसे पहले आपको इसमें देखना है कि इसमें पूछा क्या है। इसमें पूछा है कि करंट का फ्लो इजी कराना है। आप सोचो कि करंट का फ्लो इजी कराना है तो उसके लिए रेजिस्टेंस को क्या होना होगा, रेजिस्टेंस को कम करना होगा। अगर रेजिस्टेंस को कम करना है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को बढ़ाना होगा। तो इस तरीके से आपको सोचना है और उसका आंसर लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है, लेट द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट रिमेंस कांस्टेंट व्हाइल द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ द कंपोनेंट डिक्रीजेस टू हाफ ऑफ इट्स फॉर्मर वैल्यू, व्हाट चेंज विल अकर इन द करंट थ्रू इट। तो देखो अगर रेजिस्टेंस कांस्टेंट है और ऐसे में कहीं पर किसी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट के अंदर आप क्या कर रहे हो, दो पॉइंट्स पे पोटेंशियल डिफरेंस को आधा कर रहे हो, तो वहां पर करंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, करंट और वोल्टेज में क्या सा रिलेशन होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो अगर आपने रेजिस्टेंस में कोई चेंज नहीं लाया हुआ है और वोल्टेज में चेंज ला रहे हैं तो करंट में भी चेंज आएगा, और जिस तरीके का चेंज वोल्टेज में आ रहा है उसी तरीके का चेंज आपको करंट में भी देखने को मिलेगा अगर आपने रेजिस्टेंस को कांस्टेंट रखा हुआ है। तो अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस को आधा कर रहे हैं तो करंट भी अपनी पहले वाली वैल्यू से आधी हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको सोचना होता है। तो डायरेक्ट रिलेशन है और जितना वोल्टेज डिक्रीज होगा उतना ही करंट भी डिक्रीज होगा। तो इस तरीके से आपको करना है। तो आप लिखेंगे कि पहले अगर वोल्टेज वी था और बाद में वोल्टेज हो गया वी बाय टू और रेजिस्टेंस सेम है, तो करंट अगर पहले आई था तो बाद में आई बाय टू हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें पूछा है, व्हाई आर कॉइल्स ऑफ इलेक्ट्रिक टोस्टर्स एंड इलेक्ट्रिक आयरन मेड ऑफ एन अलॉय रादर देन ऑफ प्योर मेटल। तो इसको हमने पढ़ा भी हुआ है। तो यहाँ पर आपसे पूछा है टोस्टर्स और जो हमारा आयरन रॉड होता है उसको क्यों बनाया जाता है, अलॉय के मटेरियल से क्यों बनाते हैं। इसलिए बनाते हैं क्योंकि आपने पढ़ा है कि अलॉय का जो रेजिस्टिविटी होता है वो ज्यादा होता है, प्योर मेटल के कंपैरिजन में रेजिस्टिविटी अलॉयज की हायर होती है। उससे क्या होता है कि जल्दी से टोस्टर की वायर गर्म हो जाती है, आयरन की वायर गर्म हो जाती है। तो टोस्टर्स का इस्तेमाल ही हम हीटिंग के लिए करते हैं, ब्रेड को गर्म करने के लिए करते हैं, या फिर आयरन का यूज करते हैं कपड़ों को गर्म करने के लिए। तो ऐसे डिवाइसेस जिसमें हमें डिवाइस को गर्म करके यूज करना है तो उसमें उसकी रेजिस्टिविटी हाई होनी चाहिए। दूसरा फायदा ये होता है अलॉयज में कि इनकी टेम्परेचर कोफिशिएंट हाई होती है, जिसकी वजह से इतना ज्यादा गर्म होने के बावजूद भी ये बर्न नहीं होते हैं इजीली, तो इसीलिए हम अलॉयज का यूज करते हैं। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 5, इसमें पूछा है, यूज द डाटा इन टेबल 12.2 टू आंसर द फॉलोइंग। उसके बाद पार्ट 1 में पूछा है, विच अमंग आयरन एंड मर्करी इज अ बेटर कंडक्टर। इसमें बोला जो आपका टेबल 12.2 है इसमें आपको अलग अलग मटेरियल की रेजिस्टिविटी गिवन है। उसके बाद इसमें से पूछा है कि आयरन और मर्करी में से कौन ज्यादा बेहतर कंडक्टर है। तो आप यहाँ पर देखो 12.2, टेबल 12.2 देखो पेज नंबर 207 पर। इसमें आपको आयरन की रेजिस्टिविटी गिवन है 10 × 10⁻¹⁸, 10 × 10⁻¹⁸ ओम मीटर, और मर्करी की गिवन है 94 × 10⁻¹⁸ ओम मीटर। तो यहाँ पर देखो हायर रेजिस्टिविटी किसकी है, मर्करी की है। मर्करी की 94 × 10⁻¹⁸ ओम मीटर है और आयरन की कम है कंपेयर्ड टू मर्करी। तो आयरन बेटर कंडक्टर हुआ और मर्करी जो है वो कम कंडक्टर हुआ। उसके बाद देखो बी पार्ट में पूछा है, विच मटेरियल इज बेस्ट कंडक्टर। टेबल 12.2 को ही देख करके आपको बताना है कि कौन सा मटेरियल बेस्ट कंडक्टर है। तो बेस्ट कंडक्टर होने के लिए उसकी रेजिस्टिविटी जो होनी चाहिए वो सबसे कम होनी चाहिए। तो इस टेबल 12.2 में जो मटेरियल जिसका सबसे कम रेजिस्टिविटी है वो है सिल्वर, जिसका रेजिस्टिविटी का वैल्यू गिवन है 1.60 × 10⁻¹⁸। तो जितने सारे आपको मटेरियल्स दिए हैं उनमें से सबसे कम सिल्वर की रेजिस्टिविटी है, तो हम कह सकते हैं कि सबसे अच्छा कंडक्टर सिल्वर होगा जिसकी रेजिस्टिविटी की वैल्यू सबसे कम गिवन है हमें टेबल 12.2 में। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे अब टॉपिक जो है उसमें बोला है रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रेजिस्टर्स। आपने एक रेजिस्टर के बारे में पढ़ा, एक रेजिस्टर से हम रेजिस्टेंस का यूज करके क्या क्या इन्फॉर्मेशन लगा लेते हैं पता, या फिर एक रेजिस्टेंस जो है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे करता है, लेंथ पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे और मटेरियल ऑफ द कंडक्टर पे करता है। तो इस तरीके से आपने एक रेजिस्टर के बारे में पढ़ा। अगर मल्टीपल रेजिस्टर्स लगे हों किसी सर्किट के अंदर, और उसमें भी हम दो तरीके से लगा सकते हैं रेजिस्टर्स को, मल्टीपल रेजिस्टर्स को हम दो तरीके से लगा सकते हैं एक सर्किट के अंदर। या तो हम मान लीजिए कि कुछ 4-5 रेजिस्टर्स हमारे पास हैं और उनको हमने सीरीज में लगाया। सीरीज में लगाने का मतलब है कि पहला वाला रजिस्टर लगाया है उसके एंड से दूसरे वाले रजिस्टर के फर्स्ट एंड को लगाया है, तो एंड टू एंड होता है इसमें, एक एंड को दूसरे रजिस्टर के एंड से जोड़ते हैं। वन एंड ऑफ द रजिस्टर इज कनेक्टेड टू द अदर एंड ऑफ द रजिस्टर, इस तरीके से एक दूसरे का एंड जुड़ता जाता है। सपोज करो कि आप लोग खड़े हो, 5-6 बच्चे खड़े हो, एक दूसरे का हाथ पकड़ के सारे के सारे खड़े हो, तो सभी के सभी हाथ पकड़ के खड़े हो गए तो कैसे होगा, एक का हाथ दूसरे ने पकड़ा है, दूसरे का हाथ तीसरे ने, तीसरे का चौथे ने, इस तरीके से जो चेन बनेगी ना, तो इस तरीके की जो सीरीज बनती है इसको सीरीज कनेक्शन कहते हैं। रेजिस्टर्स में जब एंड टू एंड जॉइनिंग करी जाए रेजिस्टर्स की तो उसको सीरीज कनेक्शन कहते हैं। और अगर ऐसा हो जाए कि मान लो किसी एक कॉमन पॉइंट पे सारे के सारे रेजिस्टर्स का एक एंड जुड़ा है और दूसरे कॉमन पॉइंट पे दूसरा एंड सारे के सारे रेजिस्टर्स का जुड़ा है, तो हमारे पास सिर्फ दो ही कॉमन पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट पे एक एंड जुड़े हैं सभी रेजिस्टर्स का, एक एंड जो है वो एक पॉइंट पे जुड़ा है, एक ही इकट्ठे जोड़ दिया गया है, और बाकी जो दूसरा एंड है उसको भी इकट्ठे जोड़ के दो एंड्स हमको मिल जाते हैं जहाँ पर सभी के सभी रजिस्टर्स के एंड्स जुड़े हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको डायग्रामेटिकली दिखाया भी गया है पेज नंबर 210 पर। आप सबसे पहले तो देखो फिगर 12.6 रजिस्टर्स इन सीरीज, इसमें आप देख सकते हैं रजिस्टर्स को कैसे जोड़ा गया है एंड टू एंड, एक रजिस्टर का एंड जो है वो दूसरे रजिस्टर के एंड से जोड़ा गया है, और ये जो है जैसे हाथ पकड़ के मान लो आप लोग खड़े हो एक दूसरे का और एक चेन बना रहे हो, इस तरीके से यहाँ पर चेन बनाई गई है। पहले वाले रजिस्टर का जो सेकेंड एंड है वो दूसरे वाले रजिस्टर के फर्स्ट एंड से जोड़ा गया है, इस तरीके से जोड़ा जाता है, तो इसे सीरीज कनेक्शन कहते हैं। और उसी के नीचे देखो फिगर 12.7 में देखो, इसमें आपको दिखाया गया है पैरेलल कैसे जोड़ते हैं रजिस्टर्स को। तो यहाँ पर क्या किया गया है कि तीन रजिस्टर्स लिए गए, तीनों रजिस्टर्स के दो एंड्स होंगे, एक लेफ्ट वाला एंड और एक राइट वाला एंड। तो क्या करेंगे, लेफ्ट वाला जो एंड होगा तीनों रजिस्टर्स का उनको इकट्ठे जोड़ देंगे, उसके बाद जो राइट वाला एंड होगा तीनों रजिस्टर्स का उनको भी इकट्ठे जोड़ देंगे। तो यहाँ पर कॉमन पॉइंट होता है जिसपे रजिस्टर के एंड्स जुड़े होते हैं। सीरीज में कॉमन पॉइंट नहीं होता है, रजिस्टर्स के कॉमन पॉइंट नहीं होते हैं, सभी के सभी रजिस्टर्स के कॉमन पॉइंट नहीं होते हैं। सीरीज कनेक्शन में हम ऐसा नहीं कह सकते कि सभी के सभी रजिस्टर्स का एक ही कॉमन पॉइंट है, दो रजिस्टर्स के बीच में आपको कॉमन पॉइंट मिल जाएगा। सीरीज कनेक्शन देखो यहाँ पर, आप लोग देखो पेज नंबर 210 पर फिगर 12.6, यहाँ पे R1 और R2 के बीच में एक कॉमन पॉइंट है, R2 और R3 के बीच में एक कॉमन पॉइंट है, लेकिन तीनों के तीनों जो है इनका सिर्फ दो रजिस्टर्स के बीच में कॉमन पॉइंट है, ऐसा नहीं है कि तीनों के तीनों ही इकट्ठे जोड़ दिए गए हैं। इस तरीके से आप लोगों को जो है चेक करना होता है कि कौन सा कनेक्शन सीरीज में है, कौन सा पैरेलल में है। अगर रजिस्टर्स को सीरीज में जोड़ा गया है तो ऐसे में सभी रजिस्टर्स के अंदर करंट की वैल्यू सेम होती है, जितनी वैल्यू करंट की आपको R1 में मिलेगी उतनी ही आपको R2 में मिलेगी, उतनी ही आपको R3 में मिलेगी। लेकिन पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है कि करंट की वैल्यू सेम नहीं होती है, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू सेम होती है। R1 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही पोटेंशियल डिफरेंस R2 के अक्रॉस भी है और वही पोटेंशियल डिफरेंस R3 के अक्रॉस भी है। तो पैरेलल कनेक्शन में ये होता है कि तीनों के तीनों रेजिस्टर्स जो लगाए गए हैं उनमें क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, सीरीज में करंट सेम होगा। उसके बाद यहाँ पर हमें देखना है रेजिस्टर्स इन सीरीज। बारी बारी से कनेक्शंस देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे रेजिस्टर्स इन सीरीज के बारे में। इसको और अच्छे से समझने के लिए आपको एक्टिविटी करने को कहा गया है, एक्टिविटी 12.4। इसमें कहा है कि जैसे आप लोगों को ये फिगर 12.6 दिखाया गया है पेज नंबर 210 पर, इस तरीके से आप लोगों को कुछ रेजिस्टर्स को सीरीज में जोड़ लेना है और जो सर्किट डायग्राम दिखाया है ऐसे ही सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना है। आप मान लीजिए आपने रेजिस्टर्स ले लिए 1 ओम का, 2 ओम का, 3 ओम का, इस तरीके से आप लोगों को रेजिस्टर्स लेने हैं। मान लीजिए आपने 3 रेजिस्टर्स लिए हैं, पहला वाला रेजिस्टर जो लिया उसकी वैल्यू रेजिस्टेंस की 1 ओम है, दूसरे की 2 ओम है और तीसरे की 3 ओम है, और इन तीनों को आपने सीरीज में जोड़ दिया है। सीरीज में जोड़ने के बाद में आपने इनको एक बैटरी से जोड़ा है जिसकी वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस है 6 वोल्ट। इस तरीके से आपने कनेक्शन किया है और बीच में एक की भी लगाई है और अमीटर भी लगाया है, सीरीज में ही सारा कुछ लगाया हुआ है। अब क्या करिए कि आपने ये जो सीरीज कनेक्शन किया हुआ है रेजिस्टर्स का, अमीटर का और बैटरी का और की का, तो अब की को करिए ऑन, यानी कि आपको प्लग जो है वो क्लोज कर देना है, यानी कि आपको स्विच ऑन कर देना है, तो करंट फ्लो करने लगेगा सर्किट में। करंट जैसे ही फ्लो करने लगेगा तो अमीटर में कुछ रीडिंग आएगी। अमीटर में जो रीडिंग आएगी उसे आप नोट करके रख लीजिए। अब नेक्स्ट क्या करिए कि आपने जो रेजिस्टेंसेस लगाए हुए हैं तो R1 और R2 के बीच में जो कॉमन पॉइंट है वहां पर इस बार अमीटर को निकाल करके लगा दीजिए। R1 और R2 के बीच में लगा दीजिए इस बार अपने अमीटर को। और इस बार फिर से ये काम जब आप लोग चेंजेस ला रहे हैं सर्किट में उस वक्त आपको क्या करना होता है, स्विच को क्लोज कर देना होता है, मतलब कि ऑफ कर देना होता है उस टाइम पे। तो स्विच का जो प्लग है उसे निकाल दीजिए, उसके बाद चेंजेस किया करिए सर्किट के अंदर। नहीं तो अगर आप स्विच को प्लग को लगा करके और फिर चेंजेस आएंगे तो आपको करंट लग सकता है। तो पहले प्लग जो है उसका आपको निकाल देना है, उसे ऑफ कर देना है, और फिर आपको क्या करना है, अमीटर को निकाल करके R1 और R2 के बीच में जो कॉमन पॉइंट है वहां पे अमीटर को लगा दीजिए, फिर प्लग को लगा दीजिए, स्विच को ऑन करिए और चेक करिए कि अमीटर की रीडिंग क्या आ रही है। आपने जो पहली वाली अमीटर की रीडिंग चेक की हुई थी, आप ये नोटिस करेंगे कि पहली वाली जो अमीटर की रीडिंग आई थी उसी के जितनी ही अमीटर की रीडिंग आपको सेकेंड केस में मिली। पहले आपने कब देखा था, पहले आपने देखा था जब आपने अमीटर को लगाया हुआ था ऐसे ही कहीं पर भी वायर में लगाया हुआ था, आपने रेजिस्टेंसेस के बीच में नहीं लगाया था। लेकिन सेकेंड सिचुएशन में आपने R1 और R2 के बीच में अमीटर को लगाया, तो दोनों ही केसेस में आपने ये नोटिस किया कि करंट की वैल्यू सेम आ रही है। अब नेक्स्ट तीसरी सिचुएशन, इसमें आपको क्या करना है कि अमीटर को फिर से निकाल करके R2 और R3 के बीच में लगा देना है। तो इस बार आपने क्या किया है, R2 और R3 के बीच में लगा करके अमीटर को जैसे ही स्विच ऑन किया है तो आपने फिर से अमीटर में कुछ रीडिंग देखी है। इस बार भी आपने जो अमीटर में रीडिंग देखी, आपने ये नोटिस किया कि आपने पहले दो सिचुएशंस में जो अमीटर की रीडिंग देखी थी, जो करंट की वैल्यू आपको मिली थी, वही करंट की वैल्यू आपको फिर से मिली जब आपने अमीटर को R2 और R3 के बीच में लगा दिया। उसके बाद आपने क्या किया, उसके बाद आपने अमीटर को निकाल करके R3 के बगल में लगा दिया, R3 के राइट हैंड साइड में लगा दिया, तो वहां पर भी आपने फिर से करंट की वैल्यू देखी। तो आपको यहाँ पर भी करंट की वैल्यू पहले की जितने सिचुएशंस में आपने देखी थी सेम वैल्यू मिली, जिससे आपको ये पता लगा कि आपने अगर रेजिस्टेंसेस को सीरीज में लगाया है तो आप कहीं पर भी अमीटर को लगाएं हर जगह करंट सेम वैल्यू का ही फ्लो करता है। यहाँ पर करंट की वैल्यू जो है सीरीज कनेक्शन के टाइम पर रेजिस्टेंसेस को अगर सीरीज में लगाया जाए तो हर जगह करंट की जो फ्लो होती है वो बिल्कुल सेम होती है। तो यहाँ पर करंट की वैल्यू तो सेम है। अब आप सोचेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस का क्या, अगर हम बात करें कि R1 के अक्रॉस कितनी पोटेंशियल डिफरेंस है, R2 के अक्रॉस कितनी पोटेंशियल डिफरेंस है, या R3 के अक्रॉस कितनी पोटेंशियल डिफरेंस है और सर्किट में कितनी पोटेंशियल डिफरेंस है, तो वो हम अगर चेक करना चाहें तो हमें एक्टिविटी 12.5 करनी है। तो एक्टिविटी 12.5 जो कि पेज नंबर 211 पर है, इसमें आपको क्या करना है, आपने जो कनेक्शन किया हुआ है वो आपको यहाँ पर दिखाया गया है, पेज नंबर 211 फिगर 12.8। इसमें आपने जो सर्किट बनाया है वो देखिए किस तरीके का आपको दिखा रहे हैं, आपने रेजिस्टेंसेस को सीरीज में लगाया हुआ है। और सबसे पहला काम आपको क्या करना है, पहले तो स्विच को ऑफ करके रखिए, और आपने एक वोल्ट मीटर लेना है, और उस वोल्ट मीटर को आपको कैसे लगाना है आप यहाँ पर देखिए। यहाँ पर आप सबसे पहले तो आप आ जाओ पेज नंबर 210 पर और यहाँ पर फिगर 12.6 देखो। यहाँ पर एक्स और वाई पॉइंट आपको दिख रहा होगा जहां पर तीनों रेजिस्टेंसेस जो है एंड कर रहे हैं, एक तो एक्स पॉइंट पे एंड कर रहे हैं और एक वाई पॉइंट पे एंड कर रहे हैं। तो इसके अक्रॉस जो पॉइंट्स है एक्स और वाई पॉइंट्स है, यहाँ पर आपने वोल्टमीटर लगाना है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर डायग्राम में भी देख सकते हैं, फिगर 12.6 पेज नंबर 210, इसमें आपको दिखाया है ना किस तरीके से आपको लगाना है वोल्ट मीटर। पहली सिचुएशन में आपको जो वोल्ट मीटर लगाना है वो एंड्स पर लगाना है। जो रेजिस्टेंस है, तीनों रेजिस्टेंस लगे हुए हैं सीरीज में, एक पॉइंट है जहां पर R1 का एंड है, एक पॉइंट है जहां पर R3 का एंड है। तो एक जो R1 का एंड पॉइंट है X पॉइंट, वहां पर आपको रेजिस्टेंस का सॉरी वोल्टेज का एक एंड लगाना है वायर का, और दूसरा एंड जो वोल्टेज का पोटेंशियोमीटर आपके वोल्ट मीटर का जो दूसरा एंड है उसे Y पॉइंट पे लगाना है। तो X और Y पॉइंट पे आपको वोल्ट मीटर आपका लगा देना है। अब आपने क्या किया है, आप बेसिकली ये चेक करना चाहते हैं कि इन तीनों रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन में कितनी आपको पोटेंशियल डिफरेंस देखने को मिल रही है, तो वो आप वोल्ट मीटर से ही चेक कर सकते हैं। तो इसीलिए आपने क्या किया है कि तीनों रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन के एंड पर आपने एक वोल्ट मीटर लगाया है। अब स्विच को कर दीजिए ऑन, यानी कि क्लोज कर दीजिए, प्लग क्लोज कर दीजिए, स्विच ऑन हो जाएगा तो करंट फ्लो करने लगेगा, करंट फ्लो करने लगेगा तो कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा इन तीनों रेजिस्टेंसेस के कॉम्बिनेशन के अक्रॉस, जो कि आपको नोट करके रख लेनी है। अब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसको आपने नोट करके रख लिया, इसे आप बोलेंगे कैपिटल वी, नाम दिया है कैपिटल वी। तो आपने तीनों रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसे नोट करके रख लिया। नेक्स्ट आपको क्या करना है कि बैटरी जो है उसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस आप लोगों को चेक कर लेनी है। आपको ये करना है बैटरीज का जो कॉम्बिनेशन है, तो कॉम्बिनेशन के दो एंड्स होंगे, एक लेफ्ट एंड होगा एक राइट एंड होगा, तो आपको एक लेफ्ट एंड वायर से जोड़ देना है आपके वोल्ट मीटर को एक एंड को, और दूसरे वाला एंड जो है वो वोल्ट मीटर का उसको आपको बैटरी के दूसरे एंड से जोड़ देना है। इससे आपको क्या होगा कि आपको पोटेंशियल डिफरेंस पता चल जाएगा, आपकी बैटरी में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है वो आपको पता चल जाएगा। आप ये नोटिस करेंगे कि बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही पोटेंशियल डिफरेंस आपको रेजिस्टेंसेस के कॉम्बिनेशन के अक्रॉस भी देखने को मिलता है। तो हमने देखा कि रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन के अक्रॉस और बैटरी के अक्रॉस, दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। अब हम नेक्स्ट जानना चाहते हैं कि R1, R2 और R3 के अक्रॉस क्या क्या पोटेंशियल डिफरेंसेस हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें पोटेंशियल डिफरेंस चेक करने के लिए जो हमारा वोल्ट मीटर है उसको निकाल करके सबसे पहले R1 के अक्रॉस लगाना होगा। R1 के दो एंड्स होंगे, एक लेफ्ट एंड होगा एक राइट एंड होगा, तो आपको क्या करना है जो लेफ्ट एंड है उस उधर से आपको वोल्ट मीटर का एक एंड जोड़ देना है वायर का, और जो आपका रेजिस्टेंस R1 है उसका दूसरा एंड जो है राइट वाला एंड जो है उस एंड से भी आपको वोल्ट मीटर का एक वायर जोड़ देना। तो इस तरीके से आपने क्या किया है, R1 के टर्मिनल पॉइंट्स जो हैं वहां पर क्या क्या पोटेंशियल डिफरेंस है ये चेक करने के लिए आपने एक वोल्ट मीटर लगाया है R1 के एंड पॉइंट्स पर। पेज नंबर 211 पर आप देख सकते हैं फिगर 12.8, इसमें आप देखिए XP आपको दिख रहा होगा। R1 का एक पॉइंट है एंड पॉइंट X और दूसरा एंड पॉइंट है P, तो हमने जो वोल्ट मीटर लगाया है उसे XP पर जोड़ा है। तो उसके बाद हमने क्या किया है, स्विच को ऑन कर दिया है, तो हमने चेक कर लिया है कि R1 के अक्रॉस क्या पोटेंशियल डिफरेंस है। सिमिलरली हमने इस बार अब पोटेंशियल डिफरेंस R1 के अक्रॉस चेक करके रख लिया, वैल्यू नोट करके रख ली। अब नेक्स्ट हमको क्या करना है, यहाँ से निकाल देना है R1 के अक्रॉस से पोटेंशियल डिफरेंस चेक करने के बाद वोल्ट मीटर निकाल करके। अब हम R2 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस चेक करना चाहते हैं, तो हम वोल्ट मीटर R1 से निकाल करके R2 के एंड पॉइंट्स पे जोड़ देंगे। फिगर 12.8 में आप देख सकते हैं इस बार सेकेंड सिचुएशन में आपने QS पॉइंट पर जोड़ा है, R2 के एंड पॉइंट्स पर अपने वोल्ट मीटर को जोड़ दिया है। वोल्ट मीटर को R2 के अक्रॉस जोड़ने के बाद फिर से आपने प्लग को ऑन किया है, स्विच को ऑन किया है और करंट फ्लो करने लगा जैसे ही, तो वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस है वो आपको वोल्ट मीटर में दिखने लगा जो R2 के अक्रॉस है। तो R2 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसे सपोज आपने V2 कहा है, R1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V1 कहा है और R2 के अक्रॉस V2 कहा है। उसके बाद थर्ड सिचुएशन, हमें अब R3 के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस जानना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हमारा जो वोल्ट मीटर है उसे ला करके R3 के अक्रॉस लगाएंगे, और इस बार कहाँ लगाएंगे, पॉइंट T और पॉइंट Y के बीच में लगाएंगे, यानी कि R3 के एंड पॉइंट्स पे लगाएंगे। तो हमने अपना जो वोल्ट मीटर है उसे R3 जो है उसके एंड पॉइंट्स पे लगा दिया। उसके बाद जैसे ही स्विच ऑन किया तो सर्किट में करंट फ्लो होने लग गई, करंट फ्लो हुई तो हमने देखा कि कुछ पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू दिखा रहे हैं R3 के अक्रॉस भी, इसको भी नोट करके रख लिया और इसे नाम दिया V3। तो आप ये देख रहे हैं कि जो हमने सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस कैपिटल V नोट करके रखी थी वो कहाँ कहाँ से नोट करके रखी थी, वो हमने तीनों रेजिस्टेंसेस की जो कॉम्बिनेशन है उसके एंड पॉइंट्स पे पॉइंट X और पॉइंट Y के अक्रॉस चेक की थी जो कि कैपिटल V थी। अब वो पोटेंशियल डिफरेंस जो कि तीनों रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन के अक्रॉस थी वो अलग है, हम लोगों को पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू सेम नहीं मिल रही है। R1 के अक्रॉस, R2 के अक्रॉस, R3 के अक्रॉस, तीनों के अक्रॉस अलग अलग हम लोगों को पोटेंशियल डिफरेंस मिल रही है, और ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है ये हमारे तीनों के कॉम्बिनेशन के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उससे भी अलग है। तो हमें करंट की वैल्यू तो सेम मिली थी, लेकिन यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू सेम नहीं मिल रही है। तो आपको ये समझ में आया कि सीरीज में करंट सेम होता है लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं होता है। लेकिन आप एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज नोट करेंगे, वो ये है कि जो आपने तीनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस एक कॉमन पोटेंशियल देखा था, तीनों रेजिस्टेंस का जो कॉम्बिनेशन था उसके अक्रॉस पॉइंट एक्स और पॉइंट वाई के अक्रॉस जो आपने पोटेंशियल डिफरेंस देखा था, जिसे आपने कैपिटल वी नाम दिया था, अगर आप उसकी वैल्यू को देखें तो आप वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री करेंगे तो आपको कैपिटल वी की वैल्यू के बराबर की वैल्यू मिल जाएगी। यानी कि अगर कॉम्बिनेशन की बात की जाए, R1 और R2 और R3 के कॉम्बिनेशन के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो R1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस प्लस R2 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस प्लस R3 के पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस के इक्वल है। यानी कि जो सम आएगा, जो एडिशन करने के बाद वैल्यू आएगी, V1 प्लस V2 प्लस V3 करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो इनके कॉम्बिनेशन के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके इक्वल आएगी। तो यहाँ पर सीरीज में रेजिस्टेंस जोड़ा जाए तो दो इंटरेस्टिंग बात आपको पता लगती है। एक तो ये कि तीनों की तीनों रेजिस्टेंस जो है इनके अक्रॉस जो करंट है वो सभी में सेम है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो तीनों का सम करने के बाद हम लोगों को सीरीज, हम लोग क्या करेंगे कि R1 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको ढूंढेंगे, उसको ऐड करेंगे R2 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उससे, और R3 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उससे। तो तीनों को एडिशन करने के बाद जो वैल्यू हमें मिलती है उससे हमें पता चल जाता है कि सर्किट के अंदर क्या पोटेंशियल डिफरेंस है। तो यहाँ पर सर्किट के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो R1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस प्लस R2 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस प्लस R3 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होगा। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई, बाकी की बात हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और आपको आज जो आपने पढ़ा है उसे रिवाइज कर लेना है, कहीं कोई डाउट हो तो आपको अपने टीचर से पूछना है। हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।
सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद।